मान लीजिए कि आप एक ऐसा स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं जो जो मतलब पूरी दुनिया बदलने का दावा करता है, लेकिन आप इसे एक ऐसे नए देश में शुरू करने जा रहे हैं जहां कोई कोई आपकी भाषा भी नहीं समझता।
हाँ बिल्कुल, अनजान जगह।
हाँ, वहां आपका कोई ऑफिस नहीं है, आपके पास कोई लोकल कॉन्टैक्ट नहीं है, और आपकी फंडिंग पूरी तरह से शून्य है,
मतलब जीरो।
जीरो। अगर अगर आप आज के समय में एक बिजनेस फाउंडर होते तो शायद लोग कहते कि आप बिल्कुल पागल हो गए।
बिल्कुल, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आप पर।
सही कहा। लेकिन पहली सदी में इतिहास के सबसे मशहूर चेहरों में से एक पॉल बिल्कुल यही करने जा रहा था। और आज के इस डीप डाइव में हम डॉक्टर क्रेग कीनर के रोमियो की पुस्तक पर, विशेषकर अध्याय 15 और 16 पर दिए गए लेक्चर के आधार पर इसी रोमांचक कहानी के अंदर जाने वाले हैं।
बहुत ही दिलचस्प विषय है ये।
हाँ, ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक शुरुआती धार्मिक आंदोलन सिर्फ मतलब सिर्फ चमत्कारों के दम पर नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड कूटनीति और अप्रत्याशित अंडरग्राउंड लीडर्स के दम पर पूरी दुनिया में फैला।
देखिए, पॉल की ये जो रणनीति थी ना, ये वाकई किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी।
हाँ,
जब हम उस समय के भूगोल और समाज को गहराई से देखते हैं तो उसकी योजना का जो असली पैमाना था वो समझ में आता है।
मतलब कितना बड़ा था वो पैमाना?
बहुत बड़ा। पॉल का एक बहुत मतलब लगभग असंभव सा सपना था। वो स्पेन जाना चाहता था।
अच्छा, स्पेन।
हाँ, स्पेन। और पहली सदी के रोमन साम्राज्य में स्पेन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आप बस एक नाव पकड़ें और पहुंच जाएं और काम शुरू कर दें।
हाँ, आज की तरह फ्लाइट तो थी नहीं।
बिल्कुल नहीं, ये उसके लिए एक बिल्कुल अनजान और सांस्कृतिक रूप से अलग थलग दुनिया थी।
लेकिन क्यों? क्योंकि अब तक पॉल जहां भी गया था, चाहे वो ग्रीस हो या एशिया माइनर, वहां लोग ग्रीक भाषा बोलते थे, है ना?
हाँ, ज्यादातर।
एक तरह से ग्रीक उस समय थी ग्लोबल भाषा थी, जैसे आज इंग्लिश है। वो बाजार में जाके लोगों से सीधे बात कर सकता था।
सही कहा। लेकिन स्पेन में ये सुविधा पूरी तरह गायब थी।
मतलब कोई ग्रीक नहीं बोलता था वहां?
कोई नहीं, वहां कोई ग्रीक नहीं बोलता था। लैटिन भी केवल कुछ पश्चिमी कॉलोनियों तक सीमित थी।
अरे बाप रे।
तो भाषा की इस विशाल दीवार के अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या थी।
वो क्या?
पॉल का काम करने का एक सेट पैटर्न था। वो किसी भी नए शहर में जाता तो सबसे पहले वहां के यहूदी सभागारों यानी सिनेगॉग में जाता था।
अच्छा, मतलब अपने लोगों के बीच।
हाँ, वो वहां के लोगों से मिलता, उनके धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा करता और वहीं से अपना पहला नेटवर्क बनाता था,
एक बेस तैयार करता था।
बिल्कुल। लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो पहली सदी के स्पेन में यहूदी बस्तियों या सिनेगॉग के होने के बहुत ही कम प्रमाण मिलते।
इसका मतलब है कि स्पेन में पॉल के पास न तो संवाद करने का कोई जरिया था, न ही उसे कोई ऐसा समुदाय मिलने वाला था जो उसकी बात सुनने को तैयार हो।
हाँ, मतलब वो बिल्कुल शून्य से शुरू करने वाला था।
ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था, और कोई भी समझदार लीडर इतने बड़े रिस्क को कम करने के लिए एक लॉन्च पैड ढूंढता है। और मुझे लगता है पॉल के लिए वो लॉन्च पैड रोम था।
बिल्कुल सही। उसे रोम के ईसाइयों की सख्त जरूरत थी ताकि वे उसे स्पेन पहुंचने के लिए रसद, पैसे और शायद अनुवादक भी मुहैया करा सकें।
हाँ, ट्रांसलेटर्स के बिना तो काम ही नहीं होता।
यही कारण है कि रोम का समर्थन हासिल करना उसके लिए मतलब एक तरह से जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया था। लेकिन रोम जाने से पहले और अपनी स्पेन की यात्रा शुरू करने से भी पहले पॉल के सामने एक बहुत बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती खड़ी थी।
अच्छा।
उसे एक बहुत ही नाजुक मिशन पूरा करने के लिए यरूशलम जाना था।
एक मिनट, यरूशलम?
हाँ,
मतलब जिस दिशा में उसे जाना है, स्पेन, ये उसके बिल्कुल विपरीत दिशा थी ना। रोम और स्पेन पश्चिम में है, यरूशलम पूर्व में।
हाँ, बिल्कुल विपरीत। लेकिन अगर उसका पिछला दरवाजा यानी यरूशलम का जो मूल चर्च था, अगर वही उसके खिलाफ हो गया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता था।
ओहो।
और यरूशलम वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं जा रहा था।
तो वो क्या ले जा रहा था?
वो मैसेडोनिया और अखाया जैसे गैर यहूदी चर्चों से एक बहुत बड़ा वित्तीय चंदा इकट्ठा करके ले जा रहा था।
अच्छा।
ये चंदा यरूशलम के उन यहूदी ईसाइयों के लिए था जो भयानक गरीबी और अकाल का सामना कर रहे थे।
चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है।
बताइए।
ग्रीस के लोग जो मूल रूप से यहूदी नहीं थे, वे यरूशलम के यहूदियों के लिए पैसा क्यों भेज रहे थे? क्या ये पॉल की तरफ से यरूशलम के रूढ़िवादी नेताओं को शांत करने के लिए दी गई कोई राजनीतिक रिश्वत थी?
ये सवाल उठना बहुत लाजमी है,
क्योंकि पॉल गैर यहूदियों के बीच काम कर रहा था, और मैंने सुना है यरूशलम के कई नेता उसके इस तरीके से खुश नहीं थे।
बिल्कुल खुश नहीं थे। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें प्राचीन दुनिया के एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक मूल्य को समझना होगा।
वो क्या है?
जिसे हम पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी कहते हैं।
रेसिप्रोसिटी।
देखिए, आज के जमाने में जब हम किसी संस्था को चंदा देते हैं तो हम उसे दान या चैरिटी मानते हैं।
हाँ, हम बस पैसे दे देते हैं और भूल जाते हैं।
सही कहा, लेकिन पहली सदी में ये एक सामाजिक अनुबंध होता था। पॉल का लॉजिक ये था कि चूंकि गैर यहूदियों को यरूशलेम से एक आध्यात्मिक लाभ मिला है, इसलिए उन पर यहूदी ईसाइयों का एक बड़ा भौतिक और आर्थिक कर्ज है।
अच्छा, तो ये कोई खैरात नहीं थी, ये एक तरह का कर्ज चुकाना था।
बिल्कुल, कर्ज चुकाना और सम्मान देना।
मैंने डॉक्टर कीनर के लेक्चर में देखा कि पॉल ने इस चंदे को एक मोहर या सील का नाम दिया है।
हाँ, सील।
तो जैसे प्राचीन काल में जब लोग कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजते थे तो उसे मोड़कर उस पे गरम मोम डालते थे और अपनी खास अंगूठी से उस पे छाप छोड़ देते थे। अगर वो मोहर सुरक्षित है तो मतलब सब कुछ असली है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्या पॉल इस पैसे को वैसी ही कोई मोहर मान रहा था?
बिल्कुल यही बात है। ये पैसा और वो पूरा प्रतिनिधि मंडल जो पैसे लेकर यरूशलेम जा रहा था, वो इस बात की जीवित मोहर था कि यहूदी और गैर यहूदी ईसाइयों के बीच की एकता में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सब असली है।
वाओ।
और जहां तक आपकी वो रिश्वत वाली बात थी ना,
हाँ।
प्राचीन काल की जो सम्मान और शर्म यानी ऑनर और शेम वाले समाज थे, उनमें अगर आप किसी का दिया हुआ तोहफा या पैसा ठुकरा देते हैं
तो क्या होता था?
तो इसका सीधा सा मतलब होता था खुली दुश्मनी।
अरे बाप रे।
मतलब यरूशलेम का चर्च उस पैसे को मना कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। अगर वे मना करते तो वे दुनिया को ये संदेश दे रहे होते कि हमारा और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, हम दुश्मन हैं।
मतलब पॉल ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया था।
हाँ, पॉल ये कूटनीति बहुत अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि इस पैसे को स्वीकार करना ही पड़ेगा और इसे स्वीकार करते ही दोनों गुटों के बीच एक स्थायी रिश्ता और एकता कायम हो जाएगी।
ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब आज भी जब दो अलग अलग संस्कृतियों या वैचारिक गुटों के बीच गहरी खाई होती है,
हाँ,
तो उसे पाटने का सबसे असरदार साधन अक्सर वैचारिक बहस नहीं होता, बल्कि ठोस वित्तीय और भौतिक सहयोग ही होता है।
पैसा बहुत कुछ बोलता है, तब भी और आज भी।
बिल्कुल।
तो पॉल ने यरूशलम में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए पैसे का कूटनीतिक इस्तेमाल किया, लेकिन अब उसे रोम को भी साधना था। रोम का समर्थन पाने के लिए उसने खत लिखा जो आज रोमियो की पुस्तक के नाम से जाना जाता है।
हाँ, एक बहुत ही भारी भरकम खत। लेकिन उस समय आप ऐसा कोई खत बस किसी डाकिये के हाथ में देकर नहीं भूल सकते थे ना?
बिल्कुल नहीं। खासकर रोमियो के पुस्तक जैसा खत जो प्राचीन दुनिया के सबसे जटिल और गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस खत को रोम तक पहुँचाने के लिए पॉल को एक बहुत ही भरोसेमंद और प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत थी।
हाँ।
और उसने जिसे चुना, उसकी प्रोफाइल इतिहास के उस रूढ़िवादी नजरिए को पूरी तरह तोड़ देती है जो हम अक्सर सोचते हैं।
हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम बात कर रहे हैं फोबे की।
जी हाँ, फोबे।
जब मैंने पहली बार उसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा वो बस कोई आम सेविका होगी, मतलब कोई साधारण सी महिला।
ज्यादातर लोग यही सोचते हैं,
लेकिन डॉक्टर कीनर जो तस्वीर पेश करते हैं वो बिल्कुल अलग है। फोबे कैनक्रिया नामक शहर से आती थी जो कोरिंथ के पास एक बहुत ही व्यस्त और अमीर बंदरगाह था। वो शहर कैसा था, इसका जो विवरण मिलता है वो बहुत ही यथार्थवादी और थोड़ा डार्क है ना?
हाँ, कैनक्रिया उस समय ग्लोबल व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और आप तो जानती हैं, जहाँ बंदरगाह होते हैं वहाँ नाविक होते हैं, और जहाँ इतने नाविक और व्यापारी होते हैं
वहाँ खूब पैसा होता है।
बिल्कुल, वहाँ पैसा होता है और वहाँ का सामाजिक जीवन भी वैसा ही रंगीन और थोड़ा रफ होता है। ये शहर अपनी बेशुमार दौलत के साथ साथ वेश्यावृत्ति के लिए भी काफी कुख्यात था।
अच्छा।
वहाँ मिस्र के देवता सेरापिस का एक बहुत बड़ा मंदिर था और वहाँ हर तरह की सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियाँ दिन रात होती रहती थी।
तो इस तरह के एक कठोर पुरुष प्रधान और जटिल माहौल में,
हाँ,
फोबे ने अपना एक अलग मुकाम बनाया था।
बिल्कुल।
पॉल ने अपने खत में उसे परिभाषित करने के लिए दो ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक है डाइकोनोस और दूसरा है प्रोस्टेटिस। अब डाइकोनोस का मतलब तो हम सेवक या मंत्री समझ सकते हैं,
हाँ।
लेकिन ये प्रोस्टेटिस क्या है? ये कोई मामूली टाइटल तो नहीं लगता मुझे।
नहीं, ये बिल्कुल मामूली नहीं है। प्रोस्टिटिस का मतलब होता है संरक्षक, फाइनेंसर, या एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जो अपने रसूख और पैसे से दूसरों की मदद करता है।
ओहो, मतलब एक पेट्रन।
हाँ, एक पेट्रन। रोमन समाज में ऐसे लोग संस्थाओं को फंड देते थे, उनके काम आते थे, और कानूनी मामलों में अपने लोगों का, मतलब अपने गुट का बचाव करते थे। और यहाँ सबसे हैरान करने वाला ऐतिहासिक आंकड़ा ये है कि उस प्राचीन दुनिया में केवल 10% संरक्षक की महिलाएं होती थीं।
सिर्फ 10%?
हाँ, और फोबे उन्हीं शक्तिशाली और गिनी चुनी महिलाओं में से एक थीं।
क्या बात है।
वो इतनी अमीर थीं कि वो अपने बड़े से घर में चर्च की मेजबानी करती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी।
मतलब अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो फोबे सिर्फ एक पोस्ट वुमन या डाकिया नहीं थी।
बिल्कुल नहीं,
वो मूल रूप से एक हाई लेवल एंजल इन्वेस्टर और कूटनीतिक दूत थी।
सेगा, एंजल इन्वेस्टर।
वो इस नए धर्म के पूरे स्पेन प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी, बैक कर रही थी, और क्योंकि वही इस जटिल दस्तावेज को लेकर रोम जा रही थी, तो इसका मतलब है कि जब रोम के लोगों ने खत पढ़ा होगा, तो उनके मन में जो भी सवाल आए होंगे वो उन्होंने सीधे फोबे से पूछे होंगे, है ना?
प्राचीन काल की परंपरा यही थी, जो व्यक्ति खत लाता था वही उसे पढ़कर सुनाता था और प्रेषक के इरादों की व्याख्या करता था।
मतलब वो लेटर को एक्सप्लेन करती थी,
क्योंकि खत में जो भी लिखा है उसके पीछे की टोन, उसका कॉन्टेक्स्ट, वो सब डाकिया ही बताता था।
अरे वाह, इसका सीधा सा मतलब ये है कि रोनियो की इस ऐतिहासिक और जटिल पुस्तक को सबसे पहली बार समझाने और उसकी व्याख्या करने का काम किसी पुरुष ने नहीं किया था,
नहीं,
बल्कि फोबे नाम की इस महिला ने किया था। ये तथ्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली है।
इतिहास को पलट देने वाला तथ्य ये,
सच में। लेकिन एक सवाल और है, जब फोबे ये खत लेकर रोम पहुंची तो वो गई कहां?
अच्छा सवाल है।
मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि ये शुरुआती ईसाई रोम के किसी भव्य मंदिर या किसी आलिशान इमारत में मिलते होंगे।
हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर ऐसा ही दिखाते हैं।
हाँ, लेकिन डॉक्टर कीनर रोम के जिन घरों का जिक्र करते हैं वो वाकई डरावना है।
देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज तोड़ना बहुत जरूरी है। रोम में उस समय कोई चर्च की इमारतें नहीं थी। वहां के ज्यादातर आम लोग और मजदूर वर्ग बहुमंजिला इमारतों में रहते थे, जिन्हें इंसुलाए कहा जाता था।
इंसुलाए?
हाँ, ये इंसुलाए आज के आलिशान अपार्टमेंट जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये लकड़ी और सस्ती ईंटों से बने बेहद कमजोर और खस्ताहाल ढांचे होते थे।
मैंने पढ़ा है कि ये इतने बुरी तरह बनाए जाते थे कि अक्सर ढह जाते थे।
ढहना तो आम बात थी।
और इनमें भयानक आग भी लग जाती थी, मतलब कोई सेफ्टी रूल्स नहीं थे।
इन इमारतों में जो लोग ऊपरी मंजिलों पर रहते थे वे सबसे गरीब होते थे।
अच्छा, आज तो पेंट हाउस सबसे महंगे होते हैं।
प्राचीन रोम में उल्टा था, जो जितना ऊपर रहता था वो उतना ही गरीब होता था। उनके पास केवल एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें वो सिर्फ सो सकते थे। ना वहाँ पानी की कोई सुविधा थी, ना खाना पकाने की कोई सुरक्षित जगह।
तो खाना कैसे पकाते थे?
लोग छोटे स्टोव जलाते थे जिससे धुआं भर जाता था, और अक्सर उसी से आग लग जाती थी। अगर आग लगती तो ऊपर वालों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता था।
बापरे, ये तो बिल्कुल मौत के कुएं जैसा था। तो ऐसे खतरनाक माहौल में ये जो हाउस चर्च थे वो कहाँ लगते थे? जाहिर है ऊपरी मंजिल पर तो कोई भीड़ जमा नहीं हो सकती थी।
बिल्कुल नहीं, ये गुप्त बैठकें इन इमारतों के ग्राउंड फ्लोर यानी निचली मंजिल पर होती थी।
अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पर?
हाँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ही पानी की सुविधा होती थी, कमरे थोड़े बड़े होते थे, और अक्सर वहीं व्यापारिक दुकानें होती थीं। लोग उन दुकानों के पीछे या किसी अंदरूनी हिस्से में छुपकर मिलते थे।
तो ये कोई शांत और सुरक्षित धार्मिक आयोजन नहीं था?
बिल्कुल नहीं,
ये पूरी तरह से एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था जो पड़ोसियों की नजरों से बचकर काम कर रहा था
और हर पल पकड़े जाने का डर रहता था।
और यहीं पर पॉल एक बहुत ही खास जोड़े का जिक्र करता है जो रोम में इस अंडरग्राउंड नेटवर्क को चला रहे थे, प्रिस्का और अक्वेला।
बहुत ही मशहूर जोड़ा।
हाँ, पॉल ने खत में उनके लिए एक लाइन लिखी है जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींचा।
कौन सी लाइन?
वो कहता है कि उन्होंने पॉल के लिए अपनी गर्दन खतरे में डाली। हम आज इसे एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी या मैंने अपनी गर्दन फंसा ली।
हाँ, हिंदी में बहुत बोलते हैं।
क्या पॉल भी महज कोई मुहावरा इस्तेमाल कर रहा था?
नहीं नहीं, रोमन साम्राज्य के सख्त कानूनों के संदर्भ में ये कोई अलंकार या मुहावरा नहीं था।
सच में?
डॉक्टर कीनर स्पष्ट करते हैं कि इसका सीधा मतलब रोमन तलवार से सिर कलम किया जाना था।
बीहेडिंग?
हाँ, बीहेडिंग। रोमन नागरिकों को सजाए मौत देने का यही आधिकारिक तरीका था।
ओहो।
यानी प्रिस्का और अक्विला वाकई में अपनी जान, अपना सिर सचमुच दाव पर लगा रहे थे। वे एक ऐसे साम्राज्य की नाक के नीचे एक नए राजा यानी जीसस की बात कर रहे थे, जो सीधे तौर पर राजद्रोह माना जाता था।
मतलब पकड़े गए तो सीधा सिर धड़ से अलग,
बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं।
एक बात और जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी इस जोड़े के बारे में,
क्या
पॉल जब भी इस जोड़े का जिक्र करता है तो वो ज्यादातर पत्नी का नाम, प्रिस्का का नाम, पति अक्विला से पहले लिखता है।
बहुत ही बारीक बात पकड़ी आपने।
मुझे लगता है कि ये कोई टाइपो या इत्तेफाक नहीं हो सकता।
नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है।
कैसा सुराग?
अगर आप प्राचीन रोमन अभिलेखों या कब्र के पत्थरों को देखें तो पति का नाम हमेशा पहले आता था। समाज ऐसा ही था।
हाँ, पेट्रियार्कल समाज था।
बिल्कुल, किसी महिला का नाम उसके पति से पहले तभी लिखा जाता था जब समाज में, व्यापार में या उस विशेष समूह में उस महिला का रुतबा और प्रभाव पुरुष से ज्यादा हो।
अरे वाह।
प्रिस्का का नाम पहले आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वो इस अंडरग्राउंड नेटवर्क में अपने पति से कहीं ज्यादा प्रभावी और प्रमुख नेता थी।
मतलब वो मेन लीडर थी वहाँ की।
जी हाँ।
और ये सिर्फ प्रिस्का तक सीमित नहीं है। अगर आप डॉक्टर कीनर के लेक्चर के उस हिस्से को गहराई से सुने जहाँ वे रोमियो अध्याय 16 के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं,
वो डेटा वाला पार्ट,
हाँ, तो एक ऐसा सच सामने आता है जो मतलब आपको अपनी जगह पर रोक देगा।
बिल्कुल।
हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो घोर पितृसत्तात्मक समाज था। उस समय की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के बारे में क्या सोचती थी?
स्थिति बहुत ही खराब और असमान थी। अगर आप जोसेफस और फिलो जैसे उस समय के प्रमुख इतिहासकारों और विचारकों की लेखनी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं की गवाही को अदालत में भरोसेमंद नहीं माना जाता था।
मतलब उनकी बात का कोई मोल नहीं था?
कानूनी तौर पर नहीं। उनका मानना था कि महिलाएं हल्केपन या अस्थिर दिमाग का शिकार होती हैं।
ये तो बहुत ही अपमानजनक है। और जहां तक मुझे पता है शिक्षा के दरवाजे भी उनके लिए लगभग बंद ही थे।
बिल्कुल बंद थे। 14 साल की उम्र के बाद लड़कियों को उच्च शिक्षा मिलना एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। उन्हें पुरुषों की तरह दार्शनिक या धार्मिक ग्रंथों की गहराई में जाने की अनुमति नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व तो मतलब बहुत दूर की बात थी।
और ठीक इसी जगह पर, इस बैकग्राउंड के साथ, पॉल का ये खत एक विस्फोट की तरह लगता है।
बिल्कुल, एक धमाका।
मैंने वो डेटा पॉइंट बहुत ध्यान से देखा। पॉल ने भले ही रोमियो 16 में गिनती के हिसाब से पुरुषों के नाम ज्यादा लिखे हों,
जो कि उस समय के हिसाब से स्वाभाविक है।
हाँ, क्योंकि पब्लिक फेस ज्यादातर पुरुष ही होते थे। लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर असल काम करने वालों की आती है तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है।
कैसे?
पॉल ने महिलाओं के सुसमाचार में उनके परिश्रम की प्रशंसा, मतलब जो लेबर उन्होंने किया, पुरुषों की तुलना में आनुपातिक रूप से 4 गुना ज्यादा की है।
4 गुना? ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है।
हाँ,
देखिए, जब वो इपिनेटस जैसे पुरुषों का नाम लेता है तो बस एक सामान्य सा अभिवादन करता है
कि बस हेलो बोल देना।
हाँ, लेकिन जब वो मारिया या पर्सिस जैसी महिलाओं का जिक्र करता है तो वो विशेष रूप से रुककर कहता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है। वो इन महिलाओं को अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के रूप में उसी स्तर पर रख रहा है जिस स्तर पर वो खुद था।
तो इस पूरी चर्चा का मतलब हमारे श्रोताओं के लिए क्या अर्थ निकलता है?
हाँ।
हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि ये जो प्राचीन इतिहास है ये केवल राजाओं, सेनापतियों या ऊंचे पदों पर बैठे दाढ़ी वाले पुरुषों द्वारा ही लिखा गया है।
हम यही सोचते हैं कि सब कुछ पुरुषों ने किया।
हम सोचते हैं कि बड़े आंदोलन बस ऊपर बैठे कुछ लोगों के बड़े बड़े भाषणों से फैल गए। लेकिन जब आप इस खत जैसे जमीनी दस्तावेजों को देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है।
बिल्कुल अलग सच्चाई।
पर्दे के पीछे का असल काम, वो भारी भरकम फंडिंग, वो अपनी गर्दन कटवाने का रिस्क और उस अंडरग्राउंड नेटवर्क को खौफनाक रोमन इमारतों में जिंदा रखना,
हाँ,
ये सब महिलाएं कर रही थीं।
और ये हमें ये भी सिखाता है कि जब हम किसी भी संगठन या आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें महज टाइटल देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि असल में पसीना कौन बहा रहा था।
बिल्कुल सही बात है।
पॉल ने कम से कम अपने खत में उन महिलाओं को इतिहास का महज एक फुटनोट बनने से रोक दिया। उसने उन्हें अमर कर दिया।
हाँ, और हमने आज देखा कि कैसे पॉल स्पेन तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मास्टरमाइंड रणनीति बना रहा था। कैसे उसने यरूशलेम में वैचारिक और सांस्कृतिक खाइयों को पाटने के लिए पैसे की कूटनीति और रेसिप्रोसिटी का, पारस्परिकता का इस्तेमाल किया।
बहुत ही स्मार्ट मूव था वो।
और कैसे फोबे जैसी एंजल इन्वेस्टर और प्रिस्का जैसी अंडरग्राउंड लीडर्स ने इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया।
लेकिन सुनिए
जी,
इस लेक्चर के बिल्कुल अंत में एक ऐसी जानकारी है जो मुझे लगता है कि आपको और सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगी।
अच्छा।
एक ऐसा रहस्य जो सदियों की मान्यताओं को सीधे चुनौती देता है।
हाँ हाँ, वो आखिरी नाम जिस पर डॉक्टर कीना बात करते हैं, मैं समझ गई आप किस तरफ जा रहे हैं।
जी, पॉल अपने खत के अंत में दो और लोगों को सलाम भेजता है, एंड्रोनिकस और जूनिया।
एंड्रोनिकस और जूनिया।
वो कहता है कि वे उससे भी पहले से इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं।
मतलब पॉल से भी सीनियर।
हाँ, सीनियर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉल उनके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्यांश का इस्तेमाल करता है।
क्या कहता है वो?
वो कहता है कि वे प्रेरितों यानी अपोस्टल्स के बीच उत्कृष्ट हैं।
अपोस्टल्स मतलब किसी भी धार्मिक आंदोलन का सबसे भीतरी, सबसे उच्च और सबसे शक्तिशाली सर्कल।
बिल्कुल, टॉप लीडरशिप।
अब यहाँ सारा सस्पेंस इस बात पर टिका है कि ये दोनों लोग हैं कौन। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि एंड्रोनिकस तो स्पष्ट रूप से एक पुरुष का नाम है।
हाँ, वो तो साफ है।
लेकिन जूनिया ये एक महिला का नाम है।
बिल्कुल, एक महिला का नाम।
संभवतः वे दोनों पति पत्नी या शायद भाई बहन थे।
और यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
क्या?
देखिए, अगर जूनिया एक महिला का नाम है और पॉल स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि वे दोनों अपोस्टल्स के बीच उत्कृष्ट हैं, तो क्या इसका सीधा और तार्किक अर्थ ये नहीं है कि पहली सदी के उस मूल ईसाई आंदोलन में एक महिला अपोस्टल थी?
अरे बाप रे, ये सच में इतिहास के पन्नों में रखा एक टाइम बॉम्ब है।
बिल्कुल टाइम बॉम्ब है।
आप खुद सोचिए, अगर पहली सदी के उस सबसे शुरुआती और सबसे शुद्ध माने जाने वाले दौर में वाकई एक महिला अपोस्टल थी, एक ऐसा पद जिसे निर्विवाद रूप से सर्वोच्च माना जाता है।
हाँ।
तो फिर सदियों से चली आ रही उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बारे में हम क्या कहेंगे?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
उस व्यवस्था का क्या जिसने हमेशा ये दावा किया है कि धार्मिक और वैचारिक नेतृत्व पर केवल और केवल पुरुषों का ही एकाधिकार है। क्या इतिहास ने जानबूझकर इन महिलाओं की पहचान को धुंधला कर दिया?
ये सोचने वाली बात है।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको खुद खोजना होगा। आज के लिए बस इतना ही। विचार करते रहिए।